ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा की याद का गीत हम लोग सुन रहे थे। वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। बाबा तब भी हमारे साथ थे, बाबा अब भी हमारे साथ है। और ये तो बाबा का वायदा है कि बाबा अंत तक हमारे साथ रहेगा ही, लेकिन समय प्रति समय विधि में परिवर्तन जरूर आता है। और इसलिए जब विधि परिवर्तित होती है तब ब्राह्मणों के मन के अंदर कई प्रकार के सवाल उठते हैं और सोचते हैं कि अब बाबा कैसे हैं हमारे साथ में। बाबा से मिलन मनाने के लिए इतने बाबा के बच्चे पधारे हैं, बाबा कैसे मिलन मनाएंगे। बाबा के रथ के विषय में कई सवाल मन के अंदर आ जाते हैं, परंतु हर बात के लिए बाबा ने पहले से इशारा दिया हुआ है और उसी अनुसार बाबा अपना पाठ जब भी चेंज करते हैं तो काफी समय पहले इशारा देने के बाद ही चेंज करते हैं। ये हो सकता है कि हम बच्चे जिस वक्त बाबा ने वो बात कही है उस वक्त उसको ग्रैस्प नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए, और इसीलिए आज वो सारे सवाल है मन के अंदर। कई बार कई ब्राह्मण आकर के हमें ये भी सवाल करते हैं कि बाबा तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, तो वो दादी के रथ को ठीक क्यों नहीं कर देते हैं, है ना। हम सभी बच्चे मिलन मना सके तो रथ को ठीक क्यों नहीं करते हैं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो इसीलिए ये सारे सवाल जो है। लेकिन बाबा हमेशा ये कहते हैं कि ड्रामा के विधान में जो बातें हैं उसमें भगवान इंटरफियर नहीं करता है, और इसीलिए समय को समझते हुए पार्ट को भी समझने की आवश्यकता है। जब भी स्कूल में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक ही क्लास में बैठे रहना कौन पसंद करेगा सालों साल। हर कोई ये चाहेगा कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उस समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते थे और साकार में साकार मिलन होता था। साकार वतन में साकार मिलन कराते थे और उसका अनुभव कुछ आत्माओं ने लिया और वो पार्ट भी करीबन 33 साल बाबा का चला साकार में साकार मिलन का। लेकिन उसके बाद भी पार्ट परिवर्तन होने से पहले बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा था कि ये साकार ब्रह्मा बाबा भी नहीं रहेगा, फिर भी बाबा साथ निभाएगा, बाबा साथ रहेगा। लेकिन शायद उस समय हम ये कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि साकार में ब्रह्मा बाबा चला जाएगा, ये साकार रथ को छोड़ देगा, ये कल्पना भी हम लोग ने नहीं किया था। क्योंकि हर कोई बाबा का स्वास्थ्य देखते हुए, भले बाबा की आयु बढ़ती थी लेकिन जैसे बाबा का स्वास्थ्य देखते हुए हर कोई यही समझते बस खांसी है और कोई तकलीफ तो बाबा को थी नहीं, तो सोचते थे कि बाबा तो अंत तक हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन जब पार्ट परिवर्तन करने का समय आया तो साकार देह को त्याग किया और उस समय भी बच्चों के मन के अंदर कई प्रकार के सवाल थे कि ब्रह्मा बाबा चला गया, अब कैसे पाठ होगा, अब कैसे मिलन होगा, अब क्या होगा, यज्ञ कैसे चलेगा, मधुबन क्यों आएंगे, किसको मिलने आएंगे। लेकिन पहली ही मुरली के अंदर बाबा ने सारे मन के प्रश्नों का जवाब दे दिया। और अव्यक्त बाप दादा की जब प्रद्रामणी हुई दादी के तन में और मुरली चलाई और मधुबन में आकर के कैसे मिलन होगा, ये सब बातें स्पष्ट कर दी। तो 69 के बाद 69 से लेकर के जो है साकार में अव्यक्त मिलन हुआ तो एक ग्रेड अप चढ़े। वो साकार में साकार मिलन था, लेकिन उसके बाद 69 से साकार में अव्यक्त मिलन आरंभ हुआ तो एक ग्रेड ऊपर चढ़ गए। और ये हर कोई महसूस करता है कि अव्यक्त मुरलियां आज भी हम सभी ने सुने, अव्यक्त मुरलियां कितनी पावरफुल मुरलियां होती थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाता रहा बाबा, और इसलिए संपूर्णता के तरफ आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य मिलने लगे, उससे हम बच्चे सभी बहुत संतुष्ट हो गए। कभी मिस करने का अनुभव नहीं किया, वो साकार मिलन वालों ने भी ये महसूस नहीं किया, दादियों ने, कि बाबा हमारे साथ नहीं है। क्योंकि अव्यक्त बाप दादा समय प्रति समय, पहले की बात मैं याद करती हूँ तो बाबा हर तीसरे दिन पर आते थे गुलजार दादी के माध्यम से मुरली सुनाने के लिए, और जिसमें ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त किए हुए, तो वो जो मुरलियां चली संपूर्णता के तरफ इशारा करने वाली या संपूर्णता के तरफ जाने के लिए प्रेरित करने वाली, तो साकार मुरलियों से अव्यक्त मुरली पावरफुल समझने लगे कि एक मुरली भी अगर कोई यथार्थ रीति से चबा चबा करके ग्रहण कर ले, आज की मुरली कोई अगर लिया जाए तो स्मृति दृष्टि वृत्ति को लेकर के बाबा ने जो कनेक्शन बता करके बताया कि उसमें जब पवित्रता आ जाती है तो उस एक बात के ऊपर भी फोकस करे तो कोई भी इंसान अपने पुरुषार्थ में इतना तीव्र गति बढ़ा सकता है और संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो साकार में अव्यक्त मिलन हुआ वो डबल इंजन लग गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी संपूर्णता को प्राप्त हो गए और शिव बाबा तो है ही संपूर्ण, तो बाप दादा ये डबल इंजन लग गया, तो इसीलिए पालना भी इतने पावरफुल हो गई। और हर कोई ये महसूस करने लगे कि अव्यक्त मिलन का जो अनुभव है वो बहुत सुंदर रहा। कभी भी किसी को भी फील नहीं हुआ कि बाबा हमारे साथ नहीं है, है ना? लेकिन अब समय आया है अब फिर से आगे बढ़ने का, एक ग्रेड और आगे चढ़ने का। और वो अभी समय जो है वो है अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, पावरफुल, सबसे पावरफुल। क्योंकि बाबा ने पहले से ही ये इशारे दिए हैं कि साकार में कई प्रकार की लिमिटेशन आती है, समय की, स्थान की, हर बात की लिमिटेशन है। लेकिन बाबा ने निमंत्रण दे दिया कि अब बच्चे सूक्ष्म वतन में, अव्यक्ति वतन में अव्यक्ति मिलन जब चाहो तब कर सको। तो जिस तरह साकार में साकार मिलन से साकार में अव्यक्त मिलन पावरफुल हो गया, ऐसे ही साकार में अव्यक्त मिलन से अव्यक्त में अव्यक्त मिलन ये उससे भी पावरफुल है कि जिसमें, क्यों मैं ये बात कहती हूं, क्योंकि जब साकार में अव्यक्त मिलन होता था तो कुछ आत्माएं स्टेज पर आते थे, बाबा के साथ मिलते थे, और तब भी कईयों को सवाल उठता था कि हमारे कब ऐसा नसीब होगा, कब भाग्य होगा जो हम बाबा के साथ में बैठे, बाबा के साथ में ये दादियों का भाग्य कितना ऊंचा। तो बाबा तो हर बच्चे का संकल्प पढ़ता है ना, सुनता है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऑफर करता हूँ, हर बच्चे वतन में आ जाओ, मेरे साथ बैठो और जब चाहो तुम आकर के बैठो, और कोई संकल्प चलाने की बात नहीं है। तो इसीलिए ये अनुभव बाबा अब कराना चाहता है बच्चों को, ये ऑफर है बाबा की, ये ऑफर है। तो इसलिए ये साल से 2018 से प्रमोशन हो गई सबकी, सबकी प्रमोशन हो गई। ये प्रमोशन मंजूर है या अभी तक भी वो साकार में मिलन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये प्रमोशन मंजूर है ना सबको? तो अव्यक्त में अव्यक्ति मिलन बहुत पावरफुल मिलन है ये, और इसीलिए बाबा इस वक्त लिफ्ट देने के लिए तैयार है। ये लिफ्ट का हम लाभ ले लें। साकार में साकार मिलन 33 साल चला, साकार में अव्यक्त मिलन 49 इयर्स चला, अब अव्यक्त में अव्यक्त मिलन जो है वो ज्यादा साल चलने वाला नहीं है। और इसीलिए अगर प्रश्नों में उलझे रहेंगे कि दादी की तबीयत ऐसे क्यों, बाबा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बाबा दादी को ठीक, ये प्रश्नों में जो उलझा रहेगा उसका ये समय भी चला जाएगा, और फिर अफसोस करने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा हाथ में, क्योंकि वो अव्यक्त मिलन का अनुभव जो बाबा लिफ्ट दे करके कराना चाहते हैं वो ही नहीं किया। और उसी के लिए बाबा ने जो संदेश भेजा कि बच्चे अमृत वेले को पावरफुल करो, आज तो आप सबने अमृत वेला बहुत पावरफुल किया, 2 बजे से किया ना, तो इसीलिए जिसका अमृत वेले का जो स्टेज है वो पावरफुल होगा वो इस मिलन को बहुत सहज अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि अमृत वेले बाबा विशेष लिफ्ट देता है, और इस मिलन के अभ्यासी बनने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि अमृत वेले स्वाभाविक रीति से हम देह और देह की दुनिया से कट ऑफ होते हैं, तो बाबा के साथ सहज बुद्धि योग जुड़ जाता है। ये अव्यक्त में अव्यक्ति मिलन कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। मैं बाबा की एक अव्यक्त मुरली पुरानी पढ़ रही थी जिसमें बाबा ने इस मिलन के बारे में कहा, तब ये विचार चला कि अब तो प्रमोशन वाला समय आ गया और अभी तक कई बच्चे उलझे हुए हैं, तो इसीलिए ये विचार चला कि बाबा ने कहा कि जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे और सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा थे, तो साकार का ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा उस संपूर्ण ब्रह्मा बाबा में मर्ज हो गया। ठीक इसी तरह हम सभी ब्राह्मणों का भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कहो या संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप वतन में है, ये पुरुषार्थी स्वरूप, पहले बात को समझो, ये पुरुषार्थी स्वरूप को अब उस स्वरूप में मर्ज करना है और तब हम ये मिलन नेचुरल अनुभव कर सकेंगे। चलते फिरते उठते बैठते ये मिलन का आनंद जैसे हर वक्त बाबा साथ है और साथ ही कंबाइंड रूप में अनुभव करते जाएंगे तो ये अनुभव इतना पावरफुल हो जाएगा। उस समय जैसे आप चलते फिरते नहीं महसूस करेंगे, इतना लाइट अपने आप में महसूस करेंगे। और जब ये लाइट स्थिति होगी इतनी अंदर में और ये मिलन का आनंद लेंगे तो जब ऊपर से नीचे कारोबार के लिए आएंगे तो ऐसा महसूस करेंगे जैसे मैं अवतरित आत्मा हूँ, ये कारोबार के लिए आई हूँ, कारोबार करके फिर वापस ऊपर, क्योंकि वो अनुभव हमें खींचेगा, वापस ऊपर की ओर खींचेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये मिलन बहुत पावरफुल है। दूसरी बात कि जैसे संपूर्णता की स्टेज आवाहन कर रही है, हम पुरुषार्थी की स्टेज को खींच रही है, आकर्षित कर रही है, जैसे एक मैग्नेट के तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, ऐसे हमारी स्टेज भी हमें आकर्षित करेगी। लेकिन कब कब करेगी, कब उस मिलन का सहज अनुभव हम कर सकेंगे, उसके लिए बाबा ने कहा कि अव्यक्ति मिलन का आधार है, अव्यक्त या अलौकिक बनना। इसलिए कहा ये प्रमोशन वाली स्टेज क्यों है, क्योंकि हमारी स्थिति को भी हमें अपग्रेड करना है, ऊंचा उठाना है। और इसीलिए कहा अव्यक्त या अलौकिक स्थिति हमारी बनानी है, अलौकिक, लौकिक से परे, लौकिक बातों से, खास करके हमारी स्थिति को डाउन करने के लिए कौन सी बात निमित्त बनती है विशेष, तो लौकिक बातें, लौकिक बातें यानी स्थूलता की बातें। जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, देह अभिमान में रहेंगे, तो देह अभिमान की जो बातें हैं वो देह अभिमान की बातें हमें ऊपर उठने नहीं देंगी, उस स्थिति का अनुभव करने नहीं देंगी। इसीलिए बाबा कहते अलौकिक तमे जाओ। उसके लिए अव्यक्त यानी व्यक्त भाव, दैहिक भाव, जो आज बाबा ने मुरली में बहुत स्पष्ट किया उस बात को कि जितना हमारा व्यक्त भाव दैहिक भाव होगा, किसी को दैहिक दृष्टि से भी देखे, दैहिक वृत्ति भी हमारे अंदर आ गई, तो उस अव्यक्त स्थिति में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला आधार है अव्यक्ति मिलन का अनुभव करने के लिए कि दिन भर में अधिक से अधिक जितना हम व्यक्त भाव से अपने आप को ऊपर उठा सके, जितना आत्माभिमानी स्थिति, जो आज बाबा ने कहा कि ये नहीं कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं वही शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। और जब पवित्र आत्मा हूँ समझते हैं तो अपने आप को उस लाइट के ओरा में देखो, लाइट के कार्ब में देखना है। और जब अपने आप को उस लाइट के कार्ब में देखेंगे, चलेंगे, तो भी आप महसूस करो कि लाइट का कार्ब मेरे साथ, मेरे चारों ओर है, तो ये कवच का काम करेगा जो हमें नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव बातें या नेगेटिव जो भाव है दुनिया के अंदर, उनसे हमें सुरक्षित रखेगा। तो सारा समय ये महसूस करना है कि मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, लाइट स्वरूप हूँ, माइट स्वरूप हूँ। तो ये ओरा अपना विकसित होने लगेगा, ये प्रभा मंडल हमारा जितना विकसित होगा, इस प्रभा मंडल के विकसित होने से कोई भी नेगेटिव आपके सामने आएगी नहीं। ऐसा महसूस करेंगे बाबा के साथ ही वतन में चल रहे हैं, वतन में चल रहे हैं। और जब आप इसी स्मृति में रहेंगे उस समय अनेक आत्माओं को आपका साक्षात्कार कराएगा बाबा। इसीलिए कहा यह प्रमोशन की स्टेज है, क्योंकि यही स्टेज के माध्यम से बाबा अपना कार्य कराएगा। जैसे कई मुरली में बाबा ने कहा कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए, संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए, उसके पीछे कारण क्या था? कारण यही था कि साकार समय लिमिटेड सेवा होती थी, बहुत स्लो गति से सेवा होती थी, लेकिन जैसे ही बाबा संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त हुए, कितनी आत्माओं को दूर दूर से साक्षात्कार होकर के वो बाबा तक पहुंचते थे। सफेद वस्त्रधारी हमारे स्वप्न में आया, सफेद वस्त्रधारी हमें इशारा कर रहा था, बुला रहा था, कईयों को साक्षात्कार हुआ और सेवा की गति तीव्र हो गई। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं कि अब मेरे हर बच्चे अव्यक्त में अव्यक्त मिलन के अभ्यासी हो जाए। जितने ही अभ्यासी हो जाएंगे, इतने सबका साक्षात्कार लोगों को होने लगेगा, तो सेवा की गति समाप्ति की ओर ले जाएगी या नहीं ले जाएंगी? समाप्ति वर्ष ऐसे ही थोड़ी कहा है। तो इसीलिए ये सेवा को भी समाप्ति की ओर ले जाने वाली यही स्टेज है, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को निमित्त बना रहा है। इसीलिए हम सभी भाग्यशाली है कि ये पाठ परिवर्तन होने में भी जो कल्याण है, क्योंकि बाबा कहे कि अब बच्चों की वृद्धि इतनी हो गई है कि अब बाबा उन बच्चों के द्वारा अपना कार्य कराना चाहते हैं कि अब सबको सहज ही वो फरिश्तों का साक्षात्कार हो, कि जैसे फरिश्ते उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जब भी हम किसी से बात करें तो उस समय भी अंदर ये भाव इमर्ज रूप में रखे कि मैं बिंदु आत्मा हूँ, ये भी बिंदु आत्मा है। उस भाव से ही देखो तो आपकी दृष्टि बहुत कुछ कह देंगी उनको, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, शब्दों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शब्द माना स्थूलता, लेकिन अव्यक्त स्थिति माना शुद्ध संकल्पों की स्थिति। कि कम्युनिकेशन जो होगा, वार्तालाप जो होगा, वो भी शुद्ध संकल्पों के आधार पर होगा, जहां बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। जितनी बुद्धि हमारी रिफाइन होगी, उतना हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे, और हर वक्त बाबा के साथ का अनुभव कि बाबा हमारे साथ साथ है, ये फीलिंग आएंगी। हर कर्म करते भी बाबा साथ है, ये फीलिंग बाबा देगा आपको। तो अब तक हमने पुरुषार्थ किया, अब ये स्थिति में जब अपने आप को सेट करेंगे तो बाबा अनुभव कराएगा। इसलिए कहा ये प्रमोशन वाली स्थिति है, ये कोई साधारण स्थिति नहीं। लेकिन ये बाबा अभी लिफ्ट दे सकता है, क्योंकि नेचुरल है कि जब बच्चे को कोई बात में चलाना होता है तो बाप अंगुली देता है। स्थूल में भी अगर बच्चे को चलना सिखाना है तो अंगुली पकड़ के चलाते हैं, जब तक उसके पैरों में दम आ जाए तब तक अंगुली पकड़ता है। ठीक इसी तरह बाप दादा दोनों भी हमें अंगुली पकड़ करके चला रहा है, मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले हम अपनी स्थिति तो ऐसी तैयार करें। जब स्थिति ऐसी तैयार होगी तो महसूस होगा बाबा अंगुली पकड़ करके चला रहा है। अगर उलझन में रहे, ये समय बीत गया, उसके बाद बाबा मदद नहीं कर सकता है, वो फिर ऐसा ही हो गया जैसे कोई फिर जिंदगी भर तक चल नहीं पाएंगे, अपाहिज हो जाता है। इसीलिए मुझे क्या करना है? अपाहिज होकर के रहना है, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली अपाहिज होकर के रहना है या इस मिलन का अनुभव करा करके अपने आप को उठाना है, क्या करना है। इसीलिए प्रमोशन का जब समय आ गया, भगवान अंगुली दे रहा है, हाथ दे रहा है, अब पकड़ करके उठो, चलो आगे बढ़ो, इस स्थिति के अभ्यासी बन जाए तो हम निमित्त बन जाएंगे अनेकों को साक्षात्कार कराने के लिए। जैसे दादी के लिए हमेशा कहते हैं, जानकी दादी के लिए कई विदेशी भाई बहने कहते हैं कि हमें दादी जानकी का साक्षात्कार हुआ था और दादी जानकी हमें इशारा कर रही थी कि यहाँ आए और हम यहाँ पहुंच गए। तो कईयों को ये साक्षात्कार कब हुआ, तो दादी की वो स्थिति, गुलजार दादी का अनुभव कईयों को हुआ, क्योंकि गुलजार दादी का जो सूक्ष्म में ये अभ्यास और ये पुरुषार्थ, जो एक स्थान पर बैठ करके लेकिन दुनिया भर के आत्माओं को साक्षात्कार कराने के लिए समर्थी आ जाती है। इसीलिए कहा, जिसके संकल्पों में शुद्धि होगी और बुद्धि रिफाइन होगी, वही इस मिलन का आनंद ले सकता है। दिसंबर तक बाबा की मुरलियां चली, जनवरी और फरवरी में जो बाबा का मिलन हुआ, उस समय में कई आत्माओं से मिली और मैंने उन सबसे पूछा कि क्या अनुभव किया। आप मानेंगे नहीं, जो भी बाबा के नए बच्चे आए थे, सबने कहा हमने बहुत अच्छा अनुभव किया, हमें लगा ही नहीं बाबा नहीं आया, बाबा आया, हमने अनुभव किया। लेकिन कुछ पुराने को भी मैंने पूछा यही सवाल, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो मिलन जो था ना, वो अनुभव नहीं हुआ। तो क्योंकि नए क्लीन स्लेट थे तो इसीलिए उन्होंने यहां बैठे बाबा का अनुभव किया, लेकिन पुरानों पर वो साकार में अव्यक्त मिलन का लिखत थी। इसीलिए उसी की चाहना के कारण ये जो प्रमोशन मिल रहा है उसका आनंद नहीं ले पाए। इसलिए यहाँ बैठे हुए हर एक को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भगवान ने वायदा दिया, भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है, जब भगवान ने वायदा दिया कि अंत तक साथ निभाऊंगा, साथ रहूंगा, ये भगवान का वायदा है। तो जब भगवान का वायदा है तो भले रथ हो या न हो, बाबा चक्कर जरूर मारता है, और जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसको बाबा अनुभव कराता है और वो तृप्त हो जाते हैं, वो महसूस करते हैं, हाँ हमने किया, बाबा जैसे आए, वो फीलिंग आती है और वो अव्यक्ति मिलन का अनुभव ऐसे उसमें खो जाते हैं, समा जाते हैं। कल वो दिन है, लेकिन उसके लिए ये स्थिति को बनाने के लिए अब से तैयारी करो। और अब से तैयारी क्या करनी है, अंतर्मुखता। जितनी अंतर्मुखी स्थिति हम अपनी बनाएंगे, बाह्यता में नहीं आओ, बातचीत में नहीं आओ, एक दिन कम से कम इसका परहेज कर लो कि मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, जितना हो सके साइलेंस में, अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को ले जाना है, तब कल शाम को इतना पावरफुल अनुभव बाबा कराएगा। क्योंकि अगर भूमि तैयार नहीं होंगी तो बाबा तो अनुभव कराना चाहता है लेकिन लेने वाला लेवे भी। तो इसीलिए अव्यक्त में अव्यक्ति मिलन का रियल अनुभव जो करना है वो भी तो यहाँ ही करेंगे, अपने स्थान पर जाकर के नहीं कर पाएंगे इतना। क्यों? क्योंकि ये भूमि पर जहाँ इतने सालों भगवान का अवतरण हुआ है तो ये भूमि तैयार है और ये भूमि को वरदान है। तो जब वरदान है, तैयार है भूमि के अंदर, वो वाइब्रेशन भरे हुए हैं, तो इस भूमि पर अगर अनुभव नहीं कर पाए तो वहां तो कैसे करेंगे। इसीलिए आज से ही अपने आप को जितना हो सके व्यर्थ की बातें व्यक्त भाव जो आज बाबा ने कहा उससे अपने आप को ऊपर उठाओ। यहाँ किसी को कोई कारोबार नहीं है, जो सेवा होगी वो सेवा भी आप मौन में रह करके साइलेंस की शक्ति में जमा करते हुए सेवा करते चलो। बातचीत में ज्यादा नहीं आएंगे तो आप वो मिलन को बहुत सहज अनुभव कर पाएंगे और ये गारंटी है क्योंकि बाबा कराएगा, बाबा कराएगा। इसीलिए जैसे साकार से अव्यक्त में बाबा गए तब भी बाबा ने कराया और तृप्त किया हर आत्मा को, इतने साल 49 ईयर्स बाबा ने तृप्त किया, तो अब जो पार्ट चेंज हो रहा है अव्यक्त से अव्यक्त में मिलन का, ये इतनी ऊंची मिलन की स्थिति है कि जो इस मिलन के अभ्यासी बन जाएंगे तो प्राप्ति क्या होगी। प्राप्ति ये होगी, एक तो साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे, सेवा की गति को तीव्रता देने के निमित्त बनेंगे, अनेक आत्माओं को मनसा सकाश का अनुभव करा सकेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अंतिम दृश्य आएंगे विनाश के समय, जो अंतिम दृश्य आएंगे उस दृश्य में हलचल में नहीं आएंगे, हलचल में भी अचल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस स्थिति के जो पावर है वो पावर आपको हर बात से सुरक्षित रखेगा, हर बात से सुरक्षित रखेगा। इसीलिए सहज अनुभव उसको करते हुए ऊर्जा इतनी उसमें मिलेगी, इस मिलन के द्वारा जो बाबा से ऊर्जा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, जो सकाश अपने अंदर भरेंगे, तो अंतिम जो विनाश के दृश्य है उसमें हलचल में नहीं आएंगे। हलचल कहते हैं ना, हलचल अर्थात चारों तरफ हलचल वाली स्थिति होगी, लेकिन आप उस हलचल में भी हल निकाल करके आगे चलते चलेंगे, है ना? हल निकालते हुए आगे चलते चलेंगे और ये उस समय जो आत्माओं को आवश्यकता होगी उसको आप मदद कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हलचल के स्थिति में भी अचल होने का, अचल स्थिति तो रहेगी लेकिन हलचल में भी हल निकालते हुए सहजता से हल निकालेंगे, समाधान स्वरूप बन जाएंगे और दूसरों को भी समाधान देने के लिए आप निमित्त बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये हलचल वाली स्थिति में अचल रहने का अभ्यासी यही स्थिति हमें कराएगा, लेकिन ये समय बहुत कम है, ये मिलन का अनुभव करने का समय बहुत कम है। और जो ये स्थिति का अनुभवी बन जाएगा, जिसके लिए बाबा ने कहा है आगे मुरलियों में, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, जाने की मार्जिन है कि लास्ट में जो आएंगे, लेकिन वो आते ही लिफ्ट के जमाने में आ गए, तो लिफ्ट के जमाने में आते ही वो जैसे पहले वालों ने चल चल करके कितना, फिर बैलगाड़ी, फिर मोटर गाड़ी, फिर धीरे धीरे अब प्लेन, रॉकेट, ये स्टेज आ गई। तो ठीक इसी तरह पहले वालों ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन आप जिस जमाने में आए, ये रॉकेट की स्पीड का जमाना है, तो इसलिए आते ही रॉकेट में बैठ गए तो लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो इसलिए बाबा के हर वचन साकार होते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह लास्ट वाले बच्चे भी एकदम फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर में जा सकते हैं। ये अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, ये हमें रॉकेट में बैठने वाला अनुभव कराएगा और इतनी फास्ट गति से उस संपूर्णता तक पहुंचने का अनुभव कराएगा, जहां हर रीति से अगर आप देखेंगे तो इसीलिए कहा ये अव्यक्त स्थिति में मैंपन एकदम गल गया हो, मैंपन समाप्त होगा तब व्यक्त से अव्यक्त में जाएंगे। अगर मैंपन रहा होगा तो उस अव्यक्त में ट्रांसफर नहीं हो सकते, अपनी स्थिति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब सूक्ष्मता का जमाना आया है तो और सूक्ष्म हो जाओ। जब और सूक्ष्म हो जाएंगे तो मना देह भान को जब गला देंगे, सूक्ष्म आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो फिर इस मिलन, अगर कोई ऐसा कार्य किया भी तो भी निमित्त भाव अपने अंदर डेवलप कर लो, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया और मैं निमित्त हूं करके ये कार्य कर रही हूं, तो वो मैंपन वाला भाव नहीं आएगा। और जो इस अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त मिलन के अभ्यासी नहीं होंगे उसको माया आकर्षण भी करेगी, इसलिए बहुत सावधान रहना है। जितना व्यक्त भाव में रहेंगे तो माया आकर्षित करेगी, जिसके लिए बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे, कई बार साकार मुरली में आता है, अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर जाएंगे। क्यों क्यों? क्योंकि जब अव्यक्त स्थिति में ट्रांसफर नहीं हो सकते तो माया उसका पैर नीचे से खींच करके अपने तरफ खींच लेगी, तो अपने तरफ ले जाएंगे। इसलिए या तो अव्यक्त स्थिति में चले जाओ या फिर माया व्यक्त में आपको खींच के ले जाएगी। किस ओर जाना है ये हमें डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ जाना है। तो इसलिए माया अपना अंतिम दाव चलेगी, ये भी बाबा ने कह दिया है पहले ही कि अंतिम दाव जब चलेगी तो फुल फोर्स में, कि जितने हाथ आए, जितने भगवान के बच्चे हाथ आए मेरे, उनको खींच तो लूं मैं। तो इसलिए अच्छे अच्छे बच्चे भी जो एक समय बहुत अच्छा चलते थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी स्थिति को ट्रांसफर नहीं कर सके, अपग्रेड नहीं कर पाए, तो जरूर है माया उनको खींच करके जरूर ले जाएंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और फिर ये स्थिति आगे कहां ले जाएंगी, अव्यक्त स्थिति के अनुभवी जो हो जाएंगे वो तो आगे जाएंगे ना, इसलिए साकारी से आकारी, आकारी से फिर निराकारी। तो निराकारी स्थिति कहो, अशरीरीपन की अवस्था कहो, बीज रूप अवस्था कहो, उसमें जाना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि ये समय बहुत कम होगा। ये कोई 33 साल चलने वाला नहीं है या 49 इयर्स तक चलने वाला नहीं है, ये बहुत कम समय है, बहुत कम समय। कितना है ये मालूम नहीं, लेकिन भगवान के हिसाब से अब बहुत कम समय रहा है इस स्थिति के लिए, इस अनुभव के लिए। फिर ये अनुभव हमें खींचेगा। उसके बाद बाबा की एक मुरली और मुझे याद आती है, बहुत सुंदर मुरली, मैं पढ़ते पढ़ते उसमें खो गई थी। बहुत अच्छी मुझे वो बात लगी कि बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में जो है जाने का अनुभव वही कर सकते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन रचा ही जाता है जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा को रचा तो सूक्ष्म वतन को रचा बाबा ने, तो इसीलिए सूक्ष्म वतन ब्रह्मा और ब्राह्मणों का धाम है, घर है, ये हमारा घर है। तो घर बुला रहे हैं बाबा कि पहले ये सूक्ष्म वतन के घर में बुद्धि से तो आ जाओ। और जब उस अव्यक्ति मिलन के अनुभवी हो जाएंगे, अभ्यासी हो जाएंगे, तब बाबा कहते हैं कि वहां देवताएं, देवताएं माना आपकी जो स्टेज है, जो पद है, वो देवता फुल माला लेकर के आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। और फिर आप वो संपूर्ण स्टेज से उस देवता तन के अंदर सहजता से प्रवेश हो जाएंगे, यानी वो माला लेकर के खड़े हैं आपका स्वागत करने के लिए। आप सोचो, ये दृश्य को इमर्ज करो कि मेरा संपूर्ण लाइट का स्वरूप है और देवता स्वरूप, माना इतना क्लियर विजन हो जाएगा कि कौन से पद को प्राप्त करेंगे हम, और वो पद, वो स्वरूप फूल माला लेकर खड़े हैं हमारा स्वागत करने के लिए, हम उसमें जाकर के समा जाएंगे। ये वतन का अनुभव है, ये रियल में नहीं होगा, क्योंकि ये उसमें जाकर के फिर आत्मा परमधाम जाएंगी और फिर उसी देवता स्वरूप में नीचे उतरेगी। इसीलिए कहा सूक्ष्म वतन में पहले संपूर्ण स्वरूप उस देवता स्वरूप में मर्ज होगा। ये आगे का प्लानिंग है बाबा का, जो एक मुरली में बहुत क्लियर बाबा ने दिया है कैसे देवताएं फूल माला लेकर के आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए कि मेरा स्वरूप मेरे में मर्ज हो रहा है, और उसमें जाकर के मर्ज होकर के फिर वहां से परमधाम जाकर के फिर नीचे आएंगे। तो इसीलिए ये अनुभव जिसने किया होगा अव्यक्ति मिलन का, अव्यक्ति स्थिति का निमित्त होकर के जो चले और सहजता से ये मिलन का अभ्यासी जो हो गए हैं, तो अंतिम समय भी कोई दृश्य उसकी स्थिति को विचलित नहीं कर सकेगा। साक्षी दृष्टा बनना उसके लिए सहज होगा, क्योंकि वो बाबा के साथ है। तो साथी स्टेज ही साक्षी बनाने के लिए आधार बन जाएगी। तो इसीलिए आज बाबा ने साक्षी और साथी की भी बात सुनाई। तो साक्षी तब बन पाएंगे जब पहले साथी तो बनो, ये अव्यक्ति मिलन करके बाबा के साथी तो बन जाए। तो जितना बाबा के साथीपन का अनुभव कर पाएंगे हम, उतना अंतिम दृश्य को साक्षी होकर के देख सकेंगे, और देखते हुए नष्टो मोहा निर्मोही सहज होकर के हम अपने वतन की ओर उड़ेंगे। तो इसलिए बाबा के साथ ही उड़ना है। बाबा का जो वायदा है कि अंत तक मैं साथ रहूंगा और साथ लेकर के ही जाऊंगा, और लेकर के जाऊंगा, जैसे बाबा ने उस दिन कहा, मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गेट की चाबी तो मेरे पास ही है ना, दोनों चाबी बाबा के पास ही है। तो बाबा हम सबको साथ लेकर के जाने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा अंत तक साथ है और साथ रहेगा। यहाँ जब आए हैं तो अब आगे के मिलन का अभ्यासी बन जाओ। जितना आगे के मिलन के अभ्यासी बनेंगे, जो कहा प्रमोशन वाली स्टेज है, आगे बढ़ने वाली स्टेज है, अव्यक्त में अव्यक्ति मिलन, अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्ति मिलन के अभ्यासी जो बनेंगे, तो इसीलिए ये पाठ को समझो। अफसोस किसी को करने की जरूरत नहीं है कि हमने तो वो नहीं लिया। जिन्होंने साकार में अव्यक्त लिया, उन्होंने साकार में साकार नहीं लिया, लेकिन साकार में अव्यक्त में भरपूर किया बाबा ने। ठीक इसी तरह हम अफसोस करने की बात नहीं, हम लिफ्ट के जमाने में आए हैं। तो इसीलिए ये मिलन उससे भी इतना पावरफुल होगा कि ये मिलन का अनुभव आपको कोई भी प्रकार की कमी महसूस नहीं करने देगा, कोई भी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं कराएगा। तो इसीलिए नए जो आए हैं वो भी, और पुराने भी जो बाबा के बच्चे हैं, उनको मैं यही कहूंगी, इस मिलन के अभ्यासी बनो। और खास करके ये वरदानी भूमि पर आए हैं, तो वरदानी भूमि पर बाबा से इसी का ही वरदान लेकर के अनुभव करके जाओ। इतना ऊंचा अनुभव कि जिसमें सहज जितना ये अव्यक्त स्थिति को आप डेवलप करेंगे, अव्यक्ति मिलन का अनुभव करेंगे, उतना स्वभाव संस्कार को चेंज करना स्वाभाविक हो जाएगा। वो अव्यक्ति संस्कार इतने नेचुरल रूप में आने लगेंगे कि आपको पुराने संस्कार परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मिलन का आनंद तो लो, अगर अब आनंद नहीं लिया, इस समय आनंद नहीं लिया, तो कब लेंगे, कब लेंगे। तो अभी ही इस आनंद का अनुभव करते हुए अपने आप को उस संपूर्णता की स्टेज में मर्ज करते जाना है। तो इसीलिए ये बहुत ऊंची प्रमोशन वाली स्थिति है। संकल्प विकल्प, व्यर्थ संकल्प, या पता नहीं बाबा तो आया ही नहीं, ये उलझन में अपने मन को उलझाओ नहीं। समय जिस तरह से आ रहा है, उस समय के हिसाब से परिवर्तन की विधि को समझते हुए अब आवश्यकता की जो स्थिति है, उस स्थिति को डेवलप करते हुए उसमें आगे बढ़ो, यही कहना चाहेंगे हम। तो इसीलिए अब प्रमोशन हो रहा है, क्लास बदली हो रहा है, तो फेल नहीं होना है मुझे, लेकिन आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, बढ़ेंगे ना सभी। तो इसलिए बाबा तो अव्यक्त रूप में यहाँ है ही, चक्कर मारेगा ही, महसूस कराएगा ही, हाँ, लेकिन आज से जैसे कहा जो अंतर्मुखता की स्थिति में चले जाएंगे तो कल आप इतना पावरफुल इसका अनुभव करेंगे, कल सारा दिन भी अमृत वेले से लेकर के साइलेंस, तो आज से ये भूमिका बनाओ तो कल उसका अनुभव करना बहुत आसान हो जाएगा। व्यक्त बात व्यक्त भाव उसमें जाना नहीं, आए हैं यहाँ ज्ञान योग के लिए, जितना ज्यादा रतन हम लूट सके अपना लूटते जाए, लेते जाए, बरते जाए अपनी झोली को, ताकि आगे वो काम जरूर आएंगे। एक एक भाइयों बहनों के अनुभव के आधार से भी जो बातें आपको मिलेगी वो अनमोल मिलेगी, तो इसीलिए ये अनमोल खजाना अपना इकट्ठा करो। व्यक्त भाव में ज्यादा रह करके, व्यक्त बातों में आकर के इन अमूल्य रत्नों को भी गवाओ नहीं, ठीक है। ओम शांति।